तो हम श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 20वें अध्याय के 5वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। तयोः संवदतो सूता प्रवृत्ता ही अम्ला कथा आपो गंगा इवाग घ्निर हरे पादाम्बुज आश्रया। इसका अनुवाद और तत्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शौनक ने विदुर तथा मैत्रेय के बीच में होने वाले वार्तालाप के संबंध में प्रश्न किया कि भगवान की निर्मल लीलाओं के अनेक आख्यान रहे होंगे, ऐसे आख्यानों को सुनना गंगा जल में स्नान करने के सदृश है, क्योंकि इससे सभी पाप बंधन छूट सकते हैं। तात्पर्य, गंगा नदी का जल इसलिए शुद्ध है क्योंकि यह सीधे ही भगवान के पाद श्री से निकलता है। भगवत गीता गंगा जल के ही समान उत्तम है क्योंकि यह भगवान के मुख से निकली है। यही बात भगवान की किसी लीला या उनके दिव्य कार्यकलाप से संबंधित प्रत्येक घटना के लिए सत्य है। भगवान परमेश्वर हैं, उनके शब्दों, उनके प्रस्वेदन, प्रस्वेदन मतलब पसीना, प्रस्वेदन या उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। गंगा जल, उनकी लीलाओं का वर्णन तथा उनके शब्द, ये सभी एक ही परम पद पर है, अतः इनमें से किसी एक की शरण ग्रहण करना समान रूप से उत्तम है। शिला रूप गोस्वामी ने कहा है कि श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु दिव्य पद पर होती है। यदि हम अपने समस्त कार्यकलापों का तालमेल भगवान से बिठा लें तो हम भौतिक पद पर नहीं वरन आत्मिक पद पर स्थित होते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शिलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्व पदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिव शाखान वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्ण। सो पिछले अध्याय में मैत्रेय जी ने संवाद सुनाया था हिरण्याक्ष वध का, और जो कौन रिपीट कर रहा है उसको सूता गोस्वामी रिपीट कर रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। तो शौनक आदि ऋषियों ने बोला कि अभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा मन, अभी मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा। तो भगवान की लीलाओं के दो इफेक्ट होते हैं। अगर हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो उसके दो इफेक्ट हैं, दो प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव क्या पड़ता है कि मन संतुष्ट हो जाता है, और दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है, मन संतुष्ट नहीं होता। तो मन संतुष्ट हो जाता है मतलब जो भौतिक इच्छाएं हैं वो हमारी शांत हो जाती हैं, तो मन शांत हो जाता है। लेकिन मन और ज़्यादा भगवान की लीलाएं सुनना चाहता है, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो मन संतुष्ट नहीं होता, मन भरता नहीं है और ज़्यादा बातों के बारे में सुनना चाहता है। तो यहाँ पर शौनक ऋषि कह रहे हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं निर्मल लीलाएं, वो अनेक भगवान की लीलाएं हैं, और भगवान की लीला को सुनना और गंगा जल में स्नान करना एक समान है। गंगा में स्नान करने से भी शुद्ध हो जाता है व्यक्ति, और भगवान की लीलाएं सुनने से भी शुद्ध हो जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर भगवान की लीलाएं सुनने का इतना ही महत्व है कि भगवान की लीला सुनी और शुद्ध हो गए, तो लोग क्यों भगवान की लीला नहीं सुन रहे, क्यों भगवान की लीला का कीर्तन नहीं कर रहे, लोगों को बता नहीं रहे? तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो भगवान, तो लोग ऐसा नहीं है कि श्रवण और कीर्तन नहीं करना चाहते, लोग श्रवण भी करना चाहते हैं, कीर्तन भी करना चाहते हैं, और लोग एक्चुअली कर भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि भौतिक प्रकृति ने उनके जो बुद्धि को ढक दिया है, इसलिए वो श्रवण कीर्तन की जो प्रवृत्ति है उसको भगवान से विमुख होकर उसका प्रयोग कर रहे हैं। लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आपस में बैठते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि लोग खाना खाते हैं, उसके बाद एक सिगार पीते हैं आपस में बैठकर, और इधर उधर की उलझल उल बातें करते हैं, प्रज्वलित जिसे कहते हैं। तो लोग कर रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं और कीर्तन भी कर रहे हैं, लेकिन भगवत कथा का श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे। लोग भगवान को भुलाकर विमुख होकर, कृष्ण बहिर्मुख होकर, जो कार्य, जो वस्तुएं, जो सुविधाएं भगवान की सेवा में लगानी चाहिए थी, उसको भगवान इतर कार्यों में लगा रहे हैं। कृष्ण बहिर्मुख भोगवांछा करें, कृष्ण के बहिर्मुख हो गए हैं लोग। और हमारे शास्त्र में कहा गया है कि ये जो प्रवृत्ति है कि कृष्ण से विमुख होकर लोग बात कर रहे हैं, ये प्रवृत्ति एक मेंढक के टरटराहट के समान है। मेंढक टरटर करता है और वो सोचता है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहा है, लेकिन उसकी उस इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात को सुनकर कौन आ जाता है, सांप आ जाता है, और सांप आकर उसको खा लेता है, बात खत्म हो जाती है। इसी प्रकार जो भौतिक लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हम बहुत बुद्धिमान वाली बात करते हैं, लेकिन उनकी इन तथाकथित बुद्धिमान वाली बातों को सुनकर समय आने पर काल उपस्थित हो जाता है और वो लोग काल कवलित हो जाते हैं, काल उनका नाश कर देता है, उनको ग्रसित कर लेता है काल, और फिर उनके नाम के आगे क्या लिखा जाता है, स्वर्गीय। अब ये कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए, लेकिन एक प्रथा के तौर पर उनके नाम के आगे स्वर्गीय जरूर लगा देते हैं, चाहे वो कुत्ते बिल्ली के शरीर में ब्रह्मांड में होते, कहीं ना कहीं किसी ना किसी 84 लाख योनियों में भटक रहे होंगे, चाहे नरक में उनको तला जा रहा हो, लेकिन उनके घर वाले उनके नाम के आगे स्वर्गीय जरूर लगा देते हैं। सो यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है अमला कथा, भगवान की जो कथा है वो अमल है। अमल का मतलब होता है निर्मल, बिल्कुल प्योर शुद्ध, और ना केवल भगवान की कथा शुद्ध है बल्कि भगवान की कथा में इतनी पोटेंसी है, इतनी शक्ति है कि जिस व्यक्ति को छू ले उसको भी शुद्ध कर देती है। इसका उदाहरण हमारे शास्त्र में कहा गया है कि इतनी शक्ति कहाँ से आई, इतनी शक्ति इसलिए आई क्योंकि भगवान की लीला, भगवान का रूप, नाम, गुण, रूप, लीला, ये सब भगवान से अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नित्य मुक्त पूर्ण शुद्धो अभिन्नत्वान् नाम नाम, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला भगवान से अभिन्न है। इसलिए जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति भगवान के नाम में भी है, भगवान के रूप में भी है, भगवान के लीला में भी है, भगवान के धाम में भी है, भगवान की तदीय वस्तु जो भी है उसमें वो सारे गुण आ जाते हैं जो भगवान के अंदर है। जिस प्रकार प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि सूर्य गंदी से गंदी जगह पर भी दृष्टिपात करता है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है कि सूर्य गंदा नहीं हो जाता, सूर्य दूषित नहीं होता, बल्कि वो जगह, वो गंदी वस्तु पवित्र हो जाती है, स्टरलाइज हो जाती है। प्रभुपाद दूसरा उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार अग्नि है, जंगल की अग्नि है, वो अग्नि में कुछ भी आप वस्तु फेंक दो, खराब से खराब, उसका अग्नि पर प्रभाव नहीं होता, अग्नि उसको जैसे और चीज़ों को भस्म कर रही है, ऐसे उसको भी भस्म कर दे, और अग्नि किसी भी तरह से दूषित। जब कथा के बारे में बोला जाता है, अमला कथा, तो कथा एक्चुअली दो प्रकार की है। एक कथा है कि भगवान ने क्या बोला, और एक कथा है भगवान के बारे में क्या बोला। ये दोनों बातों को कृष्ण कथा बोलते हैं। भगवान ने क्या बोला मतलब भगवद गीता, भागवतम में, गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है, जहाँ पर लोगों ने, अलग अलग भक्तों ने, अर्जुन, गरुड़ इत्यादि, जो युधिष्ठिर महाराज हैं, इन सब ने भगवान से प्रश्न पूछे और भगवान ने उसके उत्तर दिए। तो ये कृष्ण कथा है कि भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ये कृष्ण कथा है। और भगवान के वाक्य जो है, भगवान के वाक्य वचन जो है, वो ऐसा नहीं कि पूरा वचन दोहराएंगे तो लाभ मिलेगा, एक आधा भगवान का वचन भी बोल दिया तो भी अनंत लाभ मिलेगा, उसका एक चौथाई बोल दिया तो भी अनंत लाभ मिलने वाला है। इतनी शक्ति है भगवान के वचनों के अंदर, भगवान के दिव्य नामों में। यही शक्ति भगवान के नामों में भी है। अगर कोई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर कोई हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर रहा है, ऑब्वियसली उसको फायदा होगा। लेकिन अगर किसी ने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, उसको भी लाभ होगा। अगर किसी ने हरे कृष्णा बोला, उसको भी लाभ होगा। अगर किसी ने हरे कृष्णा बोला तो उसको भी लाभ होगा। अगर किसी ने हरे बोला उसको भी लाभ होगा। अगर किसी ने हा अलग बोला, रे अलग बोला, एक ही वाक्य के अंदर, उसको भी लाभ होने वाला है। ऐसा हरिदास ठाकुर का वचन है। हरिदास ठाकुर ने बोला कि अगर कोई हल रिक्तम बोलता है, हल रिक्तम, तो हा अलग है, री अलग है, लेकिन कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो हा और री को पकड़ लेते हैं और हरी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको पूरा वो लाभ देते हैं जो कि हरी बोलने से लाभ होगा। वो हल रिक्तम बोलने से भी भगवान वही लाभ प्रदान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं। भगवान बहुत ही करुणामय, भगवान बहुत ही दयालु हैं। भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से कल्याण कर दिया जाए। अगर कोई अवहेलना से, क्रोध में भी अगर बोलते तो भगवान, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा हरिदास ठाकुर से, चलो फाइन, हिंदुओं का कल्याण हो गया तथाकथित, तो ये म्लेच्छों का क्या होगा? तो हरिदास ठाकुर ने बोला, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, म्लेच्छ जो है अगर वो हराम भी बोल देंगे तो भी, उन्होंने तो बोला हराम, लेकिन आप उसको हा राम करके स्वीकार कर लोगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही परम दयालु हैं। आप जैसा दयालु अवतार ना कभी सुनने में आया और ना कभी ऐसा परम दयालु अवतार आएगा। तो भगवान ने जो बोला वो कृष्ण कथा है, और भगवान के बारे में जो बोला वो भी कृष्ण कथा है। भगवान के बारे में जो बोला वो दो तरह की कथाएं हैं। एक जो कि भगवान के बारे में बोला जा रहा है कि भगवान फॉर एग्जाम्पल वृंदावन में क्या कर रहे हैं, भगवान ने मथुरा में क्या किया, भगवान ने द्वारका में क्या क्या लीलाएं की, और बहुत ही अद्भुत लीलाएं की हैं भगवान ने। अगर आप द्वारका की लीलाएं पढ़ेंगे, अगर आप तो अचंभित हो जाएंगे। और भगवान की द्वारका लीलाओं का एक जो संकेत है, थोड़ा सा ट्रेलर बृहद भागवत में के प्रथम खंड में दिया गया है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो अचंभित हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इतनी अद्भुत लीलाएं हैं भगवान की। और जब नारद जी गए थे, नारद जी कई दफा गए द्वारका में भगवान के दर्शन के लिए, तो नारद जी जब भी भगवान की लीलाओं के दर्शन किए हमेशा अचंभित हो गए। एक बार तो जब भागवतम में जिसका वर्णन आता है कि नारद मुनि गए और नारद मुनि ने देखा कि भगवान के 16,108 महल हैं, और भगवान 16,108 महलों में भगवान अपनी हर एक रानी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, और एक सा व्यवहार नहीं कर रहे, भगवान अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कुछ साइंटिफिक यंत्र का इस्तेमाल करके अपनी इमेज प्रोजेक्शन कर दी 16,000 महलों में, तो भगवान एक जगह ओरिजिनली स्थित है, भगवान ने हाथ उठाया तो 16,000 महलों में भगवान ने हाथ उठाया। ऐसा नहीं, भगवान कहीं पर विश्राम कर रहे थे, कहीं पर भगवान लूडो खेल रहे थे, कहीं पर भगवान अपने रानी के साथ वार्तालाप कर रहे थे, कहीं भगवान बच्चों को खिला रहे थे, कहीं भगवान यज्ञ कर रहे थे, कहीं भगवान मेडिटेशन कर रहे थे, कहीं भगवान संतों का स्वागत कर रहे थे। आप क्या कह रहे हो? ओके फाइन। सो भगवान अलग अलग महलों में अलग अलग लीलाएं कर रहे थे, अलग अलग कार्य कर रहे थे। ये देखकर नारद ऋषि बिल्कुल कंप्लीटली अचंभित हो गए, लेकिन वो अचंभा उस अचंभे के सामने नगण्य है जो नारद जी ने एक बार महसूस किया और जिसका वर्णन बृहद भागवत में आता है। मैं आपको वो वर्णन नहीं बताने वाला, मैं आपसे ये मेरी अपेक्षा है कि आप बृहद भागवत में खरीदोगे और उसको पढ़ोगे तो आपको उन लीलाओं का आस्वादन करने के लिए मिलेगा। और जब आप वो लीलाएं पढ़ोगे तो आप इमिजिएटली तो वहाँ तक पहुँच नहीं जाओगे, उसको ढूंढना पड़ेगा, तो और बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। बहुत ही शिक्षाप्रद बातें उसमें वर्णित हैं। अमला कथा, भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान के बारे में जो कथाएं हैं, भगवान के बारे में कथाओं में जो भगवान के भक्त हैं उनकी कथाएं भी उसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भगवान की कथा ही जो महत्वपूर्ण है और शुद्ध करने वाली है, भगवत भक्तों की कथा भी उतनी शुद्ध करने वाली है। अगर हम भगवान के भक्तों यथा पांडव हैं, ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, अगर हम इनकी कथाएं सुनेंगे पढ़ेंगे तो हमें इन भक्तों की कृपा तो प्राप्त होगी, साथ में भगवत कृपा भी प्राप्त होगी। और अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो हम में से हर एक भक्त को, एक्चुअली में श्रील प्रभुपाद जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान के प्रधान सेनापति हैं, और जो इस कलयुग में आए जीवों का उद्धार करने के लिए, अगर हम श्रील प्रभुपाद की लीलाओं को, श्रील प्रभुपाद की कृपा करुणा के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, जो प्रभुपाद लीलामृत और श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्यों ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जिनमें उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं कि शिला प्रभुपाद के साथ उनके क्या अनुभव रहे, शिला प्रभुपाद ने उनको क्या बोला, शिला प्रभुपाद ने क्या किया, क्या कहा, कहाँ गए, क्यों शिला प्रभुपाद कोई कैसे व्यवहार कर रहे थे भक्तों के साथ और प्रचार के दौरान। तो ये सारी बातें अगर हम शिला प्रभुपाद के बारे में जानेंगे तो डेफिनेटली हमें शिला प्रभुपाद की कृपा तो मिलेगी और भगवान की कृपा भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि तदीय वस्तु जो भगवान की वस्तु है उसकी आराधना करना, उसके बारे में सोचना, उसकी सेवा करना, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा करने से भी श्रेष्ठ है ना। तदीय नाम समर्चन, जो तदीय वस्तु है तदीय वस्तु मतलब जो भगवान से संबंधित वस्तु है, उसको अगर हम उसकी शरण लेंगे, अगर हम तदीय वस्तु के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में अगर हम भगवत सेवा का बीड़ा उठाएंगे, तो डेफिनेटली हमें अधिक लाभ मिलेगा, बजाय कि हम सीधे भगवान को अप्रोच करें। और एक्चुअली हम भगवान को सीधे अप्रोच कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग कृष्ण अपराधी हैं, हम लोग कृष्ण विमुख होकर इस भौतिक संसार में भोग के लिए आए, तो इस कारण से हम लोग कृष्ण अपराधी हैं। और कृष्ण इस अपराध को, जब तक कोई भगवान कृष्ण को प्रार्थना नहीं करेगा कि प्लीज इसको माफ कर दीजिए, तब तक भगवान कृष्ण हमें क्षमा करने वाले नहीं हैं। इसीलिए गुरु की शरण लेना इम्पोर्टेंट है। और श्रील प्रभुपाद इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान की शरण लेना और गुरु की शरण लेना एक समान है। जो लाभ कृष्ण की शरण लेने से मिलेगा, वही लाभ गुरु की शरण लेने से भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु और कृष्ण एकत्व है उनके अंदर। जो कृष्ण की दृष्टि है, जो चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि है, वही गुरु की दृष्टि भी है। भगवान कृष्ण अगर कह रहे हैं कि मुझे मेरी शरण में आओ, मन मना मत भक्तो मदयाची मां नमस्कुरु, मेरी शरण में आओ, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरा यशोगान करो, तो गुरु क्या बोल रहे हैं? गुरु कह रहे हैं कि कृष्ण की शरण लो, कृष्ण का गुणगान करो, कृष्ण की पूजा करो। तो क्योंकि इन दोनों बातों में विरोधाभास नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि अगर विचारों में एकत्व है तो कृष्ण और गुरु में एकत्व है। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु कृष्ण में लीन हो गए या गुरु कृष्ण है। इसका मतलब ये है, जब एकत्व की बात होती है, जब एकता की बात होती है, तो विचारों की एकता की बात है, शारीरिक दृष्टि से एकता की लीन होने की बात नहीं हो रही है। भौतिक मायावादी विचार है और बिल्कुल बहुत ही दूषित और भगवान को अप्रसन्न करने वाला विचार है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवद गीता की शुरुआत में ही बोल चुके हैं कि अर्जुन, ऐसा कोई टाइम नहीं था कि तुम नहीं थे और मैं नहीं था, और ऐसा कोई टाइम नहीं होगा कि तुम नहीं होगे तो मैं नहीं होगा। तो जब भगवान ने हरेक जीव की इंडिविजुअलिटी, उसकी व्यक्तित्व, उसकी निजता की जब भगवान रक्षा कर रहे हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं कि हम उस जो निजता का विनाश करके हम बोले कि वो लीन कर जाए। सायुज्य मुक्ति के अंदर भी हमारे आचार्य बताते हैं कि जो सायुज्य मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति में भी जब जीव भगवान के शरीर में ही एक्चुअली प्रवेश कर जाता है, तो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है, तब भी हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि तब भी जो जीव का व्यक्तित्व है, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, वो तब भी बरकरार रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई जीवात्मा भगवान की दिव्य ज्योति में प्रविष्ट हो गई तो उसका व्यक्तित्व खत्म हो गया। उन्होंने उदाहरण दिए, जिस प्रकार एक तोता एक पेड़ में प्रवेश कर जाता है, घने पेड़ के अंदर, तो अगर हम देखेंगे तो अभी वो तोता दिखाई नहीं देगा। हाँ, क्योंकि हरे रंग के पेड़ में हरे रंग का तोता दिखाई देना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तोते का अस्तित्व खत्म हो गया। तोते का अस्तित्व उस पेड़ के अंदर बरकरार है, वो तोता उस पेड़ के अंदर रह रहा है, और जब मौका आने लगेगा, जब उसको बाहर निकलना होगा, वो पेड़ से बाहर निकल आएगा, तब लोग देख लेंगे, वो हाँ ये तो अलग है, ये तो विलीन नहीं हुआ पेड़ के अंदर। तो उसी प्रकार जीवात्मा चाहे ब्रह्म ज्योति में लीन क्यों ना हो जाए, वो उसका व्यक्तित्व, अलग अस्तित्व हमेशा बरकरार रहता है, कभी भी नष्ट नहीं होता, कभी भी नष्ट नहीं होता। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद व्याख्या में कह रहे हैं कि भगवत गीता जो कृष्ण कथा है, भगवत गीता का पान करना और गंगा में स्नान करना एक समान है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर गंगा में स्नान किया, एक्चुअली मैं गंगा में स्नान किया तो उसमें प्रॉब्लम है। अगर गंगा में स्नान कर लिया तो पाप नष्ट नहीं होते, पाप ट्रांसफर हो जाते हैं। एक्चुअली गंगा को वो पापों का बोझ वहन करना पड़ता है, लेकिन अगर कृष्ण कथा का श्रवण किया तो किसी को उन पापों का बोझ सहन नहीं करना पड़ता, वो पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं, जड़ से नष्ट हो जाते हैं। एक बार अगर किसी ने भगवान की शरण ली, एक बार किसी ने बोल दिया कि हे कृष्ण हमने आपकी शरण ली, हे राम मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्लीज मुझे स्वीकार करें, तो भगवान उसके पापों को जड़ से खत्म कर देते हैं। अगर अगर कोई बीज है, पेड़ को नष्ट भी कर दिया लेकिन अगर बीज रहेगा तो दोबारा अगर उपजाऊ भूमि में बो दिया तो वापस पेड़ पौधा उग जाता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर किसी ने भगवान की शरण ली तो भगवान उस बीज को फ्राई कर देते हैं, उसको जला देते हैं। अगर कोई फ्राइड बीज है, अगर किसी बीज को लिया आपने उसको तल दिया हो, उसके बाद जितनी भी उपजाऊ भूमि में डाल दो, वो कभी भी कितनी खाद और जल डाल दो, कभी भी उसमें से पौधा नहीं निकलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि भगवान उसको जड़ से ही खत्म कर देते हैं? तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये उसी प्रकार है कि अगर कोई व्यक्ति कोई बीमार हो गया और वो बहुत ही सुपर एक्सीलेंट डॉक्टर के पास चला गया, तो वो डॉक्टर क्या करेगा? वो डॉक्टर उसकी बीमारी तो ठीक करेगा, लेकिन साथ में वो डॉक्टर उसकी जड़ को भी खत्म कर देगा बीमारी। उसके अंदर थोड़ा सा भी बीमारी का, रोग का कोई जड़ थोड़ी सी भी रहेगी तो दवाइयों के माध्यम से उसको भी ठीक कर देगा। ये एक कुशल वैद्य की, एक अच्छे डॉक्टर की निशानी है कि वो बीमारी को तो ठीक करे और उसकी जड़ को भी खत्म कर दे। बीमारी को अकेले ठीक करना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, और कृष्ण से कुशल डॉक्टर ना भौतिक ना आध्यात्मिक संसार में उपलब्ध है। इसलिए अगर कोई कृष्ण की शरण लेता है तो कृष्ण उसकी जो भी बीमारी है उसको जड़ से नष्ट कर देते हैं, जड़ से खत्म कर देते हैं। भौतिक संसार की तुलना जो है वो दवाग्नि से की गई है कि चारों तरफ आग जल रही है और इस आग से छूटने का, बचने का क्या उपाय है? इस आग से बचने का उपाय है, इस आग से बचने का उपाय भगवान कृष्ण भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय में उद्धव को बता रहे हैं। जब वो अवधूत की चर्चा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जनेषु दह्यमानेषु काम लोभ दवाग्निना ना तप्यसे अग्निना मुक्तो गंगाम्भ स्था इवा द्विपा। द्विपा मतलब एलिफेंट, हाथी। अगर जंगल में आग लग जाए तो बचने का कोई उपाय नहीं, लेकिन एक जो अगर जो हाथी है, अगर वो जंगल में जो नदी बह रही है, अगर गंगा अगर बह रही है, अगर वो गंगा में, गंगा के बीच में जाके खड़ा हो जाए तो उसके जितने भी ताप हैं, जितने भी क्लेश हैं, वो सब हर लेगी गंगा देवी। और ना केवल उसको जंगल की आग से उसकी रक्षा होगी, बल्कि गंगा का शीतल जल जो है उसको बहुत ही सुख और संतोष भी पहुंचाएगा। सो भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई हाथी है वो इंद्र तृप्ति के लिए बहुत उत्तेजित हो रहा है, लेकिन इंद्र तृप्ति करने का साधन नहीं मिल रहा, अगर वो जो हाथी है अगर वो गंगा की शरण ले ले, गंगा की तेज धारा के में प्रवेश कर जाए, तो गंगा की जो तेज धारा है निर्मल, वो उसकी जो काम वासना है उस हाथी की, उसको शांत कर देगी और उसका मन शांत हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति है जिसको इस भौतिक संसार के त्रिताप बहुत ही कष्ट पहुंचा रहे हैं। अगर वो व्यक्ति कृष्ण कथा रूपी गंगा का अगर शरण ले लेता है तो ना केवल उसके तीन ताप नष्ट हो जाते हैं बल्कि उसको उस हाथी की तरह बहुत ही सुख और शांति भी प्राप्त होती है। तो सुख और शांति कृष्ण कथा करने की जो तरीका है कि कृष्ण कथा करनी है, कृष्ण कथा करने का तरीका भगवान कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कृष्ण कथा करने का क्या तरीका है? कौन बोलेगा? हाँ हाँ कृष्ण कथा करने का तरीका है नहीं। भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण कथा करने का तरीका क्या है भक्तों के संग में। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में श्लोक पर है, मत चिता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। ये चतुश्लोकी जो गीता है उसका श्लोक है ये। हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और ये श्लोक इसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि ये श्लोक हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। कृष्ण कथा भक्तों के संग में करने से क्या लाभ होगा? एक तो अगर हमारी रुचि नहीं भी है तो भक्तों के साथ में अगर हम रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी रुचि उसमें उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि भक्त हैं वो एक ही बात को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भक्तों के संग में कृष्ण कथा की जाए। और कृष्ण कथा करने से जो वक्ता है ना केवल उसी को फायदा नहीं होता, जो श्रोता है उसको भी पूरा बल्कि उतना ही लाभ प्राप्त होता है। इतना महत्वपूर्ण है ये बात कि भगवान स्वयं श्रोता बन के भक्तों का संग करते हैं। भगवान ने स्वयं फॉर एग्जाम्पल हरिदास ठाकुर से पूछा कि लोगों का कल्याण कैसे होगा। भगवान ने स्वयं रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछे कि आप मुझे बताएं इन इन विषयों के बारे में। जब चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य का कल्याण किया, सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत ही बड़े तार्किक थे और तर्क की दृष्टि से, मायावाद की दृष्टि से शास्त्रों का वर्णन करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने जब उनका उद्धार कर दिया और सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि आप बताओ मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला उनको कि आप प्लीज़ मुझे भागवत कथा सुना, आप मुझे भागवतम के श्लोकों का वर्णन करो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि आप कौन से श्लोक का वर्णन सुनना चाहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, क्या मुझे बताओ, आत्मा रामश्च मुझे, आप जो आत्मा राम जो वर्ष है श्लोक है भागवतम का उसका वर्णन करो। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने 13 अलग अलग प्रकार से आत्मा राम श्लोक का वर्णन किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि और बताओ और बताओ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा किसी व्यक्ति में क्षमता नहीं है इन 13 तरह की व्याख्या है इसके अलावा बताने की, और किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन 13 व्याख्याओं को छुए बिना अनेक प्रकार से आत्माराम श्लोक की व्याख्या की। और उन व्याख्याओं को सुन के क्या हुआ? उन व्याख्याओं को सुन के सार्वभौम भट्टाचार्य अचंभित हुए, परम सुख उनको प्राप्त हुआ। और जब वो बिल्कुल भाव से विमलित हो गए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना षट रूप का दर्शन दिया। ये ताकत है, ये महिमा है भगवान के भगवत कथा का, भक्तों के साथ में रहकर चर्चा करना। इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि भक्ति का जन्म स्थान क्या है, तो रामानंद राय ने क्या बोला, भक्ति का जन्म स्थान है भक्तों की एसोसिएशन, भक्तों का संग, भक्तों में रह के अगर हम कथा करेंगे तो शांति चा रमंती चा, हमें अत्यंत सुख और संतोष की प्राप्ति होगी। और यही बात चैतन्य भागवत के अंत्य लीला में बताई जा रही है, परस्परानु कथानं पावनं भगवत यशा मिथो रतिर मिथस्तुष्टिर निर्वृतिर मिथा आत्मना। मिथा का मतलब है परस्पर, कि दोनों को, बोलने वाले और सुनने वालों को, अगर कोई व्यक्ति भक्तों के साथ मिलकर भगवान की महिमा गाता है और भक्तों के साथ मिलकर यह सीखता है कि भक्तों का संग करना कैसे चाहिए, भक्तों का, भक्तों के साथ रहना और भक्तों का संग करना दोनों अलग बातें हैं। ऐसा हो सकता है कि हम मंदिर में तो रह रहे हैं, बहुत सारे भक्तों से घिरे हुए हैं, लेकिन भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं। भक्तों के साथ रहना और भक्तों के संग करने में फर्क होता है। भक्तों के साथ रहना इम्पोर्टेंट है ऑफकोर्स, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भक्तों के साथ रहना। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भक्तों के साथ रहने से भक्तों का संग करने का अवसर मिलेगा। अगर भक्तों का संग नहीं किया तो भक्तों के साथ रह के भौतिक बातें इधर उधर की करके उसका कुछ लाभ नहीं है। उसी प्रकार है कि हमें बहुत बड़े खजाने का हमें खजाना प्राप्त करने का मौका मिला, हमने उसमें से एक रुपया उठाया और चलते बने, पूरा आरबीआई का लॉकर ही खुल गया और वहाँ से हम जितना हमें चाहिए उतना धन ले सकते हैं, लेकिन हमने बोला ठीक है हमें एक रुपया ही ले लिया। हाँ, या हम बोले चलो बाद में आते हैं, अरे बाद में कब आओगे, लॉकर बंद हो जाएगा, फिर कैसे ले लोगे, तो नहीं ले पाओगे। भक्तों का संग करने का मतलब है भक्तों से विचारों का आदान प्रदान, भक्तों को गुह्यम आख्याति प्रच्छति, अपने हृदय की बात बोलो कि मैं कृष्ण भक्ति में, प्लीज़ मुझे बताओ मैं कृष्ण भक्ति में कैसे तरक्की कर सकता हूँ, कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, प्रगति कर सकता हूँ। और भक्त हमें जो भी बात बताएं, चाहे वो भागवतम कथा के माध्यम से है, चाहे आमने सामने वार्तालाप से है, भक्त को हमेशा सोचना चाहिए कि मेरे लिए ही कही जा रही है ये बात। अगर हम इस मानसिकता से सुनेंगे तो शायद हम अपने जीवन में उसको उतार पाएं। तो चैतन्य भागवत में कहा जा रहा है कि व्यक्ति को भक्तों के साथ मिलकर कृष्ण का गुणगान करना चाहिए और सीखना चाहिए कि भक्तों का संग कैसे किया जा सकता है। यह कार्य सबसे अधिक शुद्ध करने वाला है, सबसे अधिक शुद्ध करने वाला है। जैसे जैसे भक्त आपस में प्रेम विकसित करते हैं, जैसे जैसे भक्तों का आपस में रिलेशनशिप, संबंध प्रगाढ़ होता है, वे सभी सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। और शिला रूपा गोस्वामी ने बताया कि 6 तरह से हम भक्तों का संग कर सकते हैं, है ना, ददाति प्रतिगनाति गुह्यम आख्याति प्रचिति भुंक्ते भोजते च षट्विद प्रीति लक्षण। 6 तरह के प्रीति लक्षण है कि ददाति भक्तों को कुछ उपहार दो, उपहार का मतलब ये नहीं कि कार बंगला उपहार दे दो, उपहार का मतलब है कृष्ण से संबंधित, कृष्ण का स्मरण कराने वाली, कृष्ण से घनिष्ठता जताने वाली, बढ़ाने वाली वस्तु का, वस्तु को प्रदान करो और वैसी वस्तु उनसे स्वीकार भी करो। गुह्य माख्या की प्रचिति, गुह्य बात अपने हृदय की बोलो और उनकी बात सुनो। हाँ, भुंगते भोजते जय, उनके घर जाओ, प्रसाद ग्रहण करो, भोजते जय, उनको अपने घर पे बुलाओ और उनको कृष्ण प्रसाद उनको खिलाओ। 6 तरह से अगर हम विवाह करेंगे, षट विधि प्रीति लक्षण। तो अगर भक्त आपस में प्रेम विकसित करते हैं तो वो बहुत ही सुख और संतोष का अनुभव करते हैं, एक दूसरे को उत्साह देकर। वे लोग, अगर एक भक्त दूसरे को उत्साह देगा, दूसरा भक्त पहले को उत्साह देगा, तो उससे क्या होगा, उससे बड़ी आसानी से इंद्र तृप्ति को छोड़ा जा सकता है। इंद्र तृप्ति को छोड़ा जा सकता है। और हमारा अपना आप सबका भी व्यक्तिगत अनुभव होगा, कई बार अगर हमारी कृष्ण भक्ति करने का, जप करने का, मंदिर जाने का मन नहीं भी कर रहा होता, अगर किसी भक्त का फोन आ जाए या कोई भक्त हमारे घर में ही आ जाए, चलो मंदिर चलते हैं, या फलानी जगह एक सेमिनार हो रहा है कृष्ण भक्ति पर, या एक वो कोई महाराज आए हुए हैं, कोई बड़े अच्छे भक्त आए हुए हैं, चलो उनकी कथा सुनने चलते हैं, तो कई बार हमारा मन नहीं भी कर रहा होता तो भी हम उस भक्त का साथ देने के लिए चले जाते हैं। तो अगर हम घर में पड़े रहते हैं तो इंद्र तृप्ति के अलावा कुछ नहीं करते। तो इसीलिए चैतन्य भागवत में यह बताया गया है कि अगर हम भक्तों के साथ संबंध विकसित करेंगे और संबंध विकसित होने के कारण भक्त अगर एक दूसरे को उत्साह देंगे तो बहुत ही आसानी से, मुश्किल नहीं रहेगा इंद्र तृप्ति छोड़ना। अगर हम किसी भक्त के साथ में रहेंगे, एक भक्त का संग कर रहे हैं, तो इंद्र तृप्ति करने का अवसर अपने आप ही कम हो जाता है। और अगर हमने उस इंद्र तृप्ति को छोड़ दिया तो हम उस संसार के दुख से भी बड़ी आसानी से मुक्ति पा सकते हैं, जो कि इंद्र तृप्ति करने का परिणाम होता है। और ये सारे लाभ हमें मिल सकते हैं कृष्ण कथा करके भक्तों के संग में। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इसके व्याख्या में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कि श्रील रूपा गोस्वामी ने कहा कि श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु दिव्य पद पर होती है। यदि हम अपने समस्त कार्यकलापों का तालमेल भगवान से बिठा लें तो हम भौतिक पद पर नहीं वरन आत्मिक पद पर स्थित होते हैं। ये बात रूपा गोस्वामी ने बताई जब वो फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य की परिभाषा दे रहे हैं। जब रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि माया से दूर हटना तो अच्छी बात है, माया से कि ये माया है, माया से दूर रहो, इंद्र तृप्ति मत करो, ये अच्छी बात है, ये वैराग्य है, इसमें शक नहीं है, लेकिन ये फल्गु वैराग्य। युक्त वैराग्य क्या है कि हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखना, भगवान से संबंधित मतलब भगवान की सेवा के योग्य देखना। इस संसार में भौतिक या आध्यात्मिक ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान की सेवा में नहीं लगाई जा सकती, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, लेकिन केवल एक शुद्ध भक्त के पास वो दृष्टि होती है कि वो किस प्रकार हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा पाए। तो अगर हमें वो दृष्टि चाहिए तो हमें भी शुद्ध भक्तों का संग करना पड़ेगा, ताकि हम उस संग के प्रभाव से जो गुण उन भक्तों में है वो गुण हम भी अंगीकार कर सकें और भगवान की सेवा में आगे बढ़ें, और उसके साइड इफेक्ट के रूप में इस भक्ति भौतिक जगत के त्रिताप से मुक्ति प्राप्त कर लें। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।